إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد بات یہ چل رہی تھی کہ رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رمضان کا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کے مہینے کا ایک مظاہرہ تو ظاہری ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو کھانے سے کی خواہش ہوتی ہے, صبر کرتا ہے, پینے کی خواہش ہوتی ہے, صبر کرتا ہے. لیکن درحقیقت بات اس سے آگے ہے, اور وہ یہ کہ ہمیں اس میں صبر کی تربیت دینا مقصود ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی تم سے لڑائی کرنے لگے تو اس سے کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف روزہ کھانے پینے کو چھوڑنا نہیں ہے, بلکہ اس بات کی عادت ڈالنی ہے کہ جن جن چیزوں کے اوپر انسان کا نفس یا اس کی نفسانی خواہشات اس کو آمادہ کرتی ہیں ان کو چھوڑ کر, ان کو دبا کر, ان کی خلاف ورزی کر کے صبر کا مقام حاصل کرے. جب بات کھانا جائز تھا چھوڑ دیا, پینا جائز تھا چھوڑ دیا, جب جائز چیزیں چھوڑی اللہ کے لیے تو جو پہلے ہی ناجائز تھیں, جو پہلے ہی حرام تھیں, ان کو نہ چھوڑا تو یہ تو عجیب بات ہوئی کہ جائز چیزیں چھوڑ دیں اور ناجائز چھوڑی نہیں. اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ پورا مہینہ صبر کی تربیت حاصل کرو, صبر کو اپنی زندگی کا شیوا بناؤ. یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صبر کے بغیر تو اس دنیا میں گزارا ہی نہیں. چاہے آدمی آخرت کے لیے کرے یا دنیا کے لیے کرے, دنیا کے لیے بھی, دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بھی صبر کرنا ضروری ہے. صبر کے بغیر دنیا بھی کا کام بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ نفس کی خواہش تو یہ ہوتی ہے پڑے سوتے رہو, لیکن اس دنیا کو کمانے کے لیے کیا کچھ جتن نہیں کرتا انسان. اور وہ کیوں نہیں کرتا, کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ دل اگرچہ چاہ رہا ہے کہ بھائی میں آرام کروں, لیکن آرام کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے, بچوں کو کیسے کھلاؤں گا, اس کے لیے مشقتیں برداشت کرتا ہے, نوکریاں کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, خدا جانے صبح سے شام تک کیا 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 ٹھوکریں کھاتا ہے, صبر کرتا ہے دنیا کے لیے. تو آخرت کے لیے اللہ کے لیے صبر کرنا کی تلقین فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ یوں تو ہر قدم پر, زندگی کے ہر قدم پر صبر کی ضرورت ہے جنت حاصل کرنے کے لیے. جنت صلہ ہے صبر کا. جنت جو ہے وہ در حقیقت انعام ہے بندے کے صبر کرنے کا. قرآن کریم جگہ جگہ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, ان کو جنت کے بالا خانے ان کی اس وجہ سے دی جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں صبر سے کام لیا تھا. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, نیک بندوں کی تعریف, جنہوں نے صبر کیا تھا اپنے پروردگار کے رضامندی حاصل کرنے کے لیے. جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے سلام علیکم بما صبرتم. وہاں جنت میں جب استقبال کیا جائے گا بندے, مسلمان بندے کا, تو کیا کہا جائے گا؟ سلام علیکم بما صبرتم, سلامتی ہے تم پر, سلامتی ہو تم پر उस सब्र की वजह से जो तुम करके आ रहे हो दुनिया में, पनेमा उकबदार, अब हमेशा के लिए तुम्हारी तुम्हारी जो जिंदगी यहां पर है वो बेहतरीन जिंदगी गुजरेगी। तो इसलिए सब्र की जरूरत तो कदम कदम पर है, और जब बंदा अपने अल्लाह के लिए अपने ख्वाहिश को पामाल करता है तो शुरू में तो उसको दिक्कत होती है, मशक्कत होती है, बुरा लगता है, लेकिन जब वो रफ्ता रफ्ता आदी बन जाता है इस बात का कि मैं अल्लाह की खातिर अपने नफसानी ख्वाहिशात को कुचल कर रखूं, तो उन नफसानी ख्वाहिशात को कुचलने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उसको एक ऐसा ऐसा नूर, ऐसा सुरूर और ऐसी तुमानीनत अता फरमाते हैं जो किसी मासियत में कभी हासिल हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि भाई ये चंद थोड़े दिनों के लिए हम बैठते हैं आशरा आखिरा में, तो जाहिर है सारी बातें तो नहीं हो पाती। एक बात मैंने पिछली मरतबा अर्ज की थी कि सब्र में हमारे दौर में, मैं समझता हूं हमारे जमाने में हमें सब्र की सबसे ज्यादा जरूरत है दो चीजों में, एक जबान के इस्तेमाल में और एक आंख के इस्तेमाल में। हमारे दौर के ये दो बड़े जबरदस्त फितने हैं जिसमें शैतान हमें मुब्तला करना चाहता है, एक जबान का फितना और एक आंख का फितना। जबान का फितना यह कि अल्लाह तबारक बताला ने हमें यह ऐसी सरकारी मशीन अता फरमा रखी है कि जब चाहते हैं अपने दिल की बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए कोई दुश्वारी ही नहीं। जाल लकुम समा वल अबसार वल अफिदा, अल्लाह ने तुम्हारे कान दिए हैं देखने के लिए, तुम्हारी आंखें दी हैं देखने के लिए, और तुम्हारे दिल दिए हैं सोचने के लिए, और अल्लाहु आइनैन वलिसानम वशफतैन, क्या तो हमने तुम्हें आंखें नहीं दी, क्या हमने तुम्हें जबान नहीं दी, क्या हमने तुम्हें होंठ नहीं दिए। ये सारी नेमतें हमने अता फरमाई हैं, ये हमारी दी हुई सरकारी मशीनें हैं जो तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से काम कर रही हैं और तुम्हारे सारे मकासद इनसे पूरे हो रहे हैं। इन्हीं सरकारी मशीनों को तुम अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करो। जबान इसलिए दी थी ताकि तुम अब हक बात कहो, इसलिए दी थी ताकि अल्लाह का जिक्र करो, इसलिए दी थी कि कुरान करीम की तिलावत करो, इसलिए दी थी कि जायज तरीके से दूसरे लोगों के दिल खुश करो, मगर तुम उसको इस्तेमाल कर रहे हो गीबत में, झूठ में, बहतान में और नाजायज कामों में। अल्लाह की दी हुई मशीन किसी वक्त अगर सल्ब कर ले वो, तुम्हारी बोलती बंद हो जाए, फिर देखो क्या होता है। उसने ये मकाम तुम्हें दे रखा है, ये एक सरकारी मशीन दी हुई है, दिल जो चाहता है कह लेते हो, मगर उसी की दी हुई मशीन, उसी के खिलाफ, उसी के अहकाम के खिलाफ, उसी की बगावत में उसको इस्तेमाल करोगे। तो ये नफ्स जो है, नफसानी ख्वाहिशात, वो इंसान को इस तरफ ले जा रही हैं, और खास तौर पर मैं आज के जमाने की बात करता हूं कि जबान का फितना बड़ा जबरदस्त फितना है। उसकी एक एक उसका एक जुजिया मैंने उस दिन बयान किया था परसों कि बिला तहकीक बात कह देना, झूठ तो है ही हराम, और कोई अक्सर और बेशतर जिनको जरा भी कुछ थोड़ी बहुत ध्यान होता है आखिरत का तो सरी झूठ बोलने से तो हत्तल इम्कान परहेज ही करते हैं। मीडिया के ऐसे ही लोग हमारे पास बहुत मौजूद हैं, लेकिन झूठ जो है वो कई रास्ते बनाता है। उसमें एक रास्ता ये है कि भाई लोगों ने कह दी, जो एक बात सुन ली थी किसी से, वो तहकीक के बगैर आगे बढ़ा दी, जिसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कफा बिल मर कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ, इंसान के झूठा होने के लिए यह बात काफी है कि वो जो कुछ सुने उसको आगे बयान करना शुरू कर दे। कुरान कहता है कि नहीं, पहले तहकीक करो, तहकीक के बगैर उस बात को आगे ले जाना चाहिए। इजा जा इन जा अकुम फासिकुम बिनबइन फतबयनु, अगर कोई फासिक शख्स तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो पहले एहतियात करो, अच्छी तरह तहकीक कर लो कि सही है कि नहीं है, उसके बगैर उसको न आगे चलाओ। अंतुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू फी अनफुसिकुम नादिमीन, अगर आगे चला दोगे तो बाद औकात तुम्हें खुद आगे जाकर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और इसका आम रवाज है इस वक्त, और जब मैं जबान की बात करता हूं तो जबान के हुक्म में कलम भी दाखिल है। जबान के अंदर वो जो तुम टेलीफोन के अंदर पैगामात भेजते हो वो भी दाखिल है, और ये सोशल मीडिया ने इस वक्त तबाही मचाई हुई है। तबाही ये मचाई हुई है कि उसमें बेतहकीक खबरें चल रही हैं, कोई देखने वाला नहीं कि बात सच्ची है कि झूठी है, और उसमें आगे चल लोग जो है ना ये करते हैं कि जो खबर मिली उस खबर को आगे बढ़ा दिया, आजकल फॉरवर्ड कर देते हैं उसको। फॉरवर्ड के माना वही लफ्ज है बिल्कुल जो हदीस में आया है कि वो आगे बयान करना शुरू कर दिया, उसको फॉरवर्ड कर दिया, यानी ये बात मैं दूसरे तक भी पहुंचा देता हूं। अब शैतान ने एक और हीला सुझाया है जो हदीस में भी आया, उसको हीला करार दिया कि बाद औकात इंसान झूठ बोलना नहीं चाहता, ना झूठी बात नकल करना चाहता है, लेकिन दिल ये चाह रहा है कि ये है मजेदार खबर, ये मजेदार खबर है, और अगर मेरी तरफ से किसी को पहुंचेगी तो वो जरा मेरा एक मुझे एक मजियत हासिल होगी कि मैंने ये खबर दूसरे को पहुंचा दी। अब पहुंचाना भी चाहता है, तहकीक है नहीं कि सही है कि गलत है, और दिल भी चाह रहा है कि पहुंचाऊं, तो उसको पहुंचाकर उसमें लिख देता है कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, यानी जैसे मुझे मिली थी वैसे ही मैं आपको पहुंचा रहा हूं। तो यानी अपने सर से ये बला टालने के लिए कि भाई मैं जो ये नकल कर रहा हूं जैसा मुझे मिला था वैसे ही मैं आपको पहुंचा रहा हूं। इसी को हदीस में कहा गया कि बीस मकियतुल कज़िब यकूल उन्नास और कमा का रसल अल्लाम। इमाम गजाली ने रूम में यह हदीस नकल किया कि रसूल करीम सल्लाम ने फरमाया कि झूठ की बदतरीन सवारी यह है कि कोई शख्स कहकर लोग कहते हैं, यानी अपने सर से जिम्मेदारी भी हटाना चाहता है कि मैं जो ये बात कह रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा बल्कि लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी किस में डाल दी, लोगों पे डाल दी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये झूठ की सवारी है, झूठ की बदतरीन सवारी है कि बराह रास्त झूठ बोलने के बजाय लोगों की तरह मनसूब कर दिया, लोग कहते हैं। तो ये दिन रात हम इसमें मुबतला है, और इस जब से ये मोबाइल जो आया है जो जिसको स्मार्ट मोबाइल कहते हैं उसने उसमें सोशल मीडिया के जरिए तबाही मची हुई है। उस तबाही की नतीजे में खानदान खराब हो रहे हैं, मुल्क तबाह हो रहे हैं, इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सब्र की तलकीन फरमाई थी वो नहीं हो रहा। बात जबान से निकालने से पहले सोचो कि ये हलाल बात कह रहा हूं या हराम। बात जो नकल कर रहा हूं वो 100% 16 आने दुरुस्त है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसको निकालू नहीं जबान से, और अगर किसी और से सुनी है तो तहकीक के बगैर आगे न सुनो। याद रखो ये जो फॉरवर्डेड एंड रिसीव्ड क्या कर तुम अपनी जान छोड़ाना चाहते हो, ये जान छूटेगी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के यहां वो रिकॉर्ड है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद, जवाब देना पड़ेगा। तुमने फला बात कही थी, दलील लाओ उसकी, तुमने फला बात कही थी उसका सबूत लेकर आओ, और उसके अगर सबूत नहीं पेश कर सकते सिर्फ ये कहकर बड़ी उज्जम मानी हो सकते कि लोग सुन रहे थे मैंने कह दिया, गर्दन पकड़ जाएगी वहां पर। लिहाजा सब्र का, जबान के सब्र का सबसे पहला काम जो मैंने अर्ज किया था वो ये है कि बात जबान से निकालने से पहले, कलम से निकालने से पहले, किसी को पैगाम देने से पहले अच्छी तरह सोच लो कि जो कुछ कह रहा हूं उसका मुझे जवाब देना पड़ेगा अल्लाह ताला के यहां। ये सब्र, जबान के सब्र की पहली बात। और दूसरी बात है भाई गीबत, ये ऐसी मुसीबत है कि जब तक बंदा सब्र का आदी ना हो, सब्र के माना ये अपने ऊपर पूरा काबू ना रखता हो, उस हद तक गीबत से बचना बहुत मुश्किल। लिहाजा रमजान यही नहीं कि गुजार दिया रोजे रख के तरावी पढ़ के बात खत्म हो गई, रमजान को शाहरुख सब्र करार देकर इस रमजान के अंदर मश्क करनी है सब्र की, अपनी जबान के ऊपर भी पहरे बिठाने हैं, अपनी आंख पर भी पहरे बिठाने हैं, तब सब्र की हकीकत हवाजे होगी, तब रोजे का असल फायदा हासिल होगा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, रोजे हमने क्यों फर्ज किए तुम पर, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तकवा किस चीज का नाम है? तकवा इस चीज का नाम है कि इंसान अगर उसकी दिल की ख्वाहिश किसी नाजायज काम की हो रही है अल्लाह के डर से उसको छोड़ दे। अगर रमजान को तुमने गुजार लिया, रोजे रख लिए, तरावियां पढ़ ली, लेकिन जब फारिग हुए तो वही झूठ, वही गीबत। आप देखो अपनी जरा, हम सब अपना जायजा लगा कर देखो हमारी जब मजलिसों में गीबत कितनी होती है, कितनी गीबत होती है हमारे मजलिसों के अंदर। मजलिस क्या है कि किसी शख्स का तज़किरा आ गया, उस बुराई से उसका तज़किरा कर दिया, गीबत हो गई। बाद लोग कहते हैं जी क्या बात है, मैं तो उसके मुंह पे कह दूं, यानी ये मैं जो बात कह रहा हूं ये मैं सिर्फ पीछे ही नहीं कह रहा, मुंह पे कह दूं। अरे मुंह पे कहेगा तो दूसरा गुनाह होगा, इसलिए कि कुरान ने दोनों को मना किया है। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, अजाब है किसका, हुमज़ा कभी लुमज़ा कभी। हुमज़ा कौन? हुमज़ा वो जो गइबत करे, यानी किसी के पीठ पीछे उसको ताने दे, पीछ के पीछे उसकी बुराई करे, वो हुमज़ा है। और जो मुंह पे ताने दे वो लुमज़ा है। तो जिस तरह पीछे ताने देना हराम है, उसी तरह मुंह पर ताने देना और ज्यादा हराम है, क्योंकि उसमें अगर पीठ पीछे तुमने किसी को बुरा कहा था तो उसकी खबर पता नहीं पहुंचे कि ना पहुंचे, उसकी दिल आजारी हो कि ना हो, लेकिन जिसको तुमने मुंह पर ताना दे दिया, चाहे सच्ची बात कर दिया हो, सच्ची बात का भी ताना दिया हो, उस पर भी पकड़ है तुम्हारी, तो लुमज़ा में दाखिल हो। सिर्फ एक सूरत है बचाव की कि तुम उसको जलील करने के लिए नहीं, उसकी खैरखाही के लिए उससे कोई चौराहे में उसको किसी गलती पर मुतनब्बे कर दो, कि भाई तुमसे ये बात गलती हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है, इसको छोड़ दो। ये तो है जन्नत का रास्ता। और ताने देना, यानी उसमें एक बुराई है लेकिन उस बुराई को तुम मुंह पे कह दो, तू तो ऐसा करता है, तू तो ऐसा, तुम्हारे तो ये चलन है, तुम्हारे तो ये हालात है, उसको मुंह पर ताना दे दो, ये भी गुनाह है। तो हुमजा को भी अल्लाह ने कहा अजाब होगा और लुमजा को भी होगा, जो पीछे ऐब बयान करे उसको भी होगा, जो सामने ऐब बयान करे और ताना दे उस पर भी होगा। तो मेरे भाइयों, ये सबक हम ले ले हैं कि इस जमाने में मशक करके जब निकले तो हमारे दिल कसौटी बना हुआ हो इस बात का कि क्या बात मुझे कहनी है क्या नहीं कहनी। अगर इंसान जबान को काबू कर ले और इन गुनाहों से बच जाए तो उसने ये समझो कि जन्नत का आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी मेरे लिए जमानत देते इस जबान की जो जबड़ों के दरमियान है और अपनी शर्मगाह की जो उसकी टांगों के दरमियान है, इन दो चीजों की जमानत दे दे कि इसको गलत में इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। तो भाई इस शहरो सब्र के अंदर कोशिश कर ली जाओ जबान को काबू में करने की। अल्लाह ताला अपने फजल करम से हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। वो सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क।